हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर ने अपने मन में ये बात सोची और फिर मैनेजर से बोला, ओके ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे डील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दो, जिस काम के लिए मुझे उन्हें मनाना है और बाकी सारी चीज़ें भी, मुझे डिटेल्स चाहिए। समर की ये बात सुनकर मैनेजर ने कहा, ठीक है मेरे साथ आओ मेरे केबिन में। इतना बोलकर मैनेजर समर को साथ लेकर अपने केबिन की तरफ ही बढ़ गया और कुछ देर के बाद समर वहां से निकला और उसे कंपनी की कार से ही ऋषभ के स्टूडियो तक भेजा गया, तो समर को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ आधे घंटे के बाद वो समर के पर्सनल आरके स्टूडियो के सामने था। वो स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ऋषभ को फेमस हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा बना था। लेकिन समर को थोड़ा अजीब लगा कि वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे और वो एकदम आसानी से अंदर आ गया। कंपनी का ड्राइवर समर को वहां पर छोड़कर वहां से वापस चला गया। समर वहां गेट के पास खड़ा हुआ सोच रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, और अंदर अगर चला भी जाएगा तो आखिर वो ऋषभ से क्या बात करेगा और कैसे? क्या सच में ऋषभ उसकी बात सुनेगा? और एक साल पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ आज भी समर के जहन में एकदम ताज़ा था, जैसे कि कल की ही बात हो। लेकिन वो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर ऋषभ को वो सब कितना याद होगा। उसके मना करने का ज़रूर ऋषभ को बुरा तो लगा ही होगा, और उस दिन के बाद से उनकी कोई बात नहीं हुई, तो हो सकता है ऋषभ उससे इस बात का बदला ले। इस बात का डर भी कहीं ना कहीं समर के अंदर था। ये सब कुछ सोचते हुए समर ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, अब इतना क्या सोचना, जब यहाँ तक आ गया हूँ तो अब चला ही जाता हूँ उससे मिलने भी, देखेंगे जो होगा। इतना बोलते हुए समर अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा और वहां पर ज्यादातर कमरों में कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ था, जिससे कि उसे नजर आ रहा था कि वहां पर अंदर कौन है और कौन नहीं। ज्यादातर जगहों पर उसे एक दो लोग ही नजर आए, उससे ज्यादा कोई भी नहीं, और उन लोगों का ध्यान शायद बाहर की तरफ नहीं था, इसीलिए उनमें से किसी ने भी समर को वहां पर गैलरी में चलते हुए नोटिस नहीं किया। और समर थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो उसे वहां पर एक दूसरा रूम नजर आया। उसका दरवाजा बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं था और वो बंद था। समर ने उस दरवाजे पर देखा तो वहां आरके लिखा हुआ था। समर समझ गया कि जरूर यही ऋषभ का कमरा होगा और हो सकता है कि यही म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी हो, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल लग रहा है, नहीं तो बाकी सारे काफी प्रोफेशनल और नॉर्मल तरह के रूम थे। ये सोचते हुए उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और उसे दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का देकर खोलना ही वाला था कि तभी वो रूम खुद ही अंदर से खुल गया। तो समर ने एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया और सामने जो कोई भी खड़ा हुआ था उसे देखकर समर एकदम ही हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने खड़ी वो लगभग 19-20 साल की छोटे से क्यूट फेस वाली लड़की भी उतनी ही ज्यादा हैरान लग रही थी। एक्चुअली में ये मेरा सवाल होना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो समर, और ये तो मेरा वर्क प्लेस है, तो मैं यहाँ पर ही रहूँगी ना? अपनी पहले से ही हैरानी से बढ़ी हुई आंखों को और भी ज्यादा बड़ा करके रूही की तरफ देखते हुए समर ने पूछा, क्या तुम्हारा वर्क प्लेस? आर यू सीरियस रूही? ये आरके स्टूडियो है, ऋषभ खन्ना का स्टूडियो, ये तुम्हारा वर्क प्लेस कैसे हो सकता है? एक मिनट, तुम उसके लिए काम करती हो? समर के ये सारे सवाल सुनकर रूही ने उसकी तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे और अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ तो इसमें इतना ज्यादा चौंकने वाली कौन सी बात है? मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे एक बड़े सेलिब्रिटी के असिस्टेंट का जॉब मिला है, तो तब भी तुम्हें अंदाजा नहीं लगा था क्या? अपनी एक आईब्रो अप करके सवाल करते हुए समर ने पूछा, क्यों, ये इकलौता ही बड़ा सेलिब्रिटी है क्या पूरी दुनिया में, जो बस तुम फेमस सेलिब्रिटी बोलोगी और इसका नाम ही आएगा मुझे ध्यान में? रूही ने हल्के से उसकी बाह पर मारते हुए कहा, कम ऑन ऋषभ, सर से ज्यादा फेमस और पॉपुलर इस टाइम कोई भी नहीं, और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा डिमांड में भी है आजकल ऋषभ सर। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझसे इतने सवाल करने से पहले खुद को एक्सप्लेन करो। रूही की बात सुनते हुए समर ने इधर उधर देखकर थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ वो मैं एक्चुअली, ये समझो मैं भी काम से ही आया हूँ यहाँ पर मिलने। अपनी आईब्रोज को सिकोड़ कर कन्फ्यूजन से रूही ने पूछा, मुझसे मिलने? नो वे, वन मिनट, तुम्हें तो जस्ट अभी पता चला मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तो तुम मुझसे मिलने कैसे आ सकते हो? तो फिर भला और किससे, क्या काम है तुम्हें, बताओ? एक के बाद एक रूही के इतने सारे सवाल से इरिटेट होते हुए समर ने कहा, क्या रूही, इतने सारे सवाल एक साथ, पहले किसका जवाब दूं मैं? समर की बात के जवाब में रूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही रूम के अंदर से ऋषभ की आवाज आई, ओहो रूही कितनी बकबक करती हो तुम, और वहां दरवाजे पर रुककर पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही हो क्या? मैंने तुमसे कॉफी लेकर आने के लिए बोला है ना? हाँ सर, मैं बस अभी लाई, दो मिनट में। इतना बोलते हुए रूही ने समर की बाहों को एकदम कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ खींचकर वहां उसे दरवाजे से थोड़ा दूर कॉरिडोर में ले आई। उसके ऐसा करने पर समर एकदम ही कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, हाथ छोड़ो मेरा रूही, कहां लेकर जा रही हो तुम मुझे, और डोंट टेल मी इसने तुम्हें यहां पर अपनी कॉफी बनाने के लिए रखा हुआ है। रूही भी अब काफी इरिटेट होती हुई बोली,
और नहीं तो क्या, म्यूजिक बनाने के लिए रखेंगे ऋषभ सर मुझे। तुम भी कमाल करते हो समर, और असिस्टेंट का काम ही क्या होता है। मैं सर के सारे शेड्यूल और वर्क प्रपोज देखती हूँ, मैं सर के साथ डिस्कशन करती हूँ और उनकी सारी जरूरी चीजों का ध्यान रखती हूँ जो भी उन्हें चाहिए। बस यही काम है मेरा फिलहाल तो। एक गहरी सांस लेते हुए समर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। मुझे एक्चुअली ऋषभ से ही मिलना है और वो काम की बात करनी है। तुम्हें शायद पता होगा वो ब्रांड कोलैबोरेशन, मैं उन लोगों की तरफ से ही आया हूँ। समर की बात सुनते ही रूही ने उसे एक और सवाल किया, तुमने कब ऐसी किसी जगह पर ज्वाइन कर लिया और मुझे बताया भी नहीं।